लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे यथार्थ मानव बंधुत्व के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने धर्म के कारण भेदभाव से पीड़ित हैं, ताकि उनके मानवाधिकारों और उनकी गरिमा को पहचाना जा सके तथा वे प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन के भागीदार बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं बुधवार के आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vorrei soffermarmi sulla figura di San Giuseppe come uomo che sogna.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज मैं संत योसेफ को सपने देखने वाले एक व्यक्ति के रूप में चित्रित करना चाहूंगा। धर्म ग्रंथ में, जैसे कि प्राचीन संस्कृति में लोगों के बीच प्रचलित थी, सपनों के द्वारा ईश्वर अपने को प्रकट करते थे। सपने हम प्रत्येक के जीवन की आध्यात्मिकता की ओर इंगित कराते हैं। वह आंतरिक स्थिति जिसकी देख रेख करने हेतु हमें कहा जाता, जहाँ ईश्वर अपने को प्रकट करते और हमेशा हमसे बातें करते हैं। लेकिन हमें अपने में यह कहना चाहिए कि हमारे अंदर केवल ईश्वर की आवाज नहीं है, बल्कि दूसरी अन्य बहुत सारी आवाजें भी व्याप्त हैं। उदाहरण के लिए, हमारे भय की आवाज, अतीत के अनुभव, आशाएं, साथ ही बुराई की आवाज जो हमें फुसलाना चाहती और हमें भ्रमित करती है।
Importante quindi riuscire a riconoscere la voce di Dio in mezzo a altre voci.
अतः यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम बहुत सारे आवाजों के मध्य ईश्वर की आवाज को पहचाने। संत योसेफ हमारे लिए इस बात को दिखलाते हैं कि वे कैसे शांति में बने रहते और उससे भी बढ़कर अपने हृदय के अंतःस्थल में वे ईश्वर के वचनों को पहचानते हुए कैसे सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आज हम सुसमाचार में चर्चित उनके चार सपनों पर चिंतन करते हुए अपने लिए ईश्वर के रहस्य को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। पहले सपने में स्वर्गदूत योसेफ को इस बात का समाधान निकालने में मदद करते हैं, जब वह मरियम के बारे में यह जानते हैं कि वह गर्भवती है। आप मरियम को अपनी पत्नी के रूप में लेने से ना डरें। वास्तव में उनके जो गर्भ हैं, वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे। वह अपने लोगों को पापों से मुक्त करेंगे। इस सपने के प्रत्युत्तर स्वरूप वह तुरंत पहल करते हैं। नींद से उठने के बाद उसने स्वर्गदूत के कथन अनुसार कार्य किया। बहुत बार हम जीवन की ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते कि हमें नहीं सूझता है कि क्या करना चाहिए। जीवन की वैसी परिस्थिति में प्रार्थना करने का अर्थ हमारे लिए यह होता है कि हम ईश्वर को अपने लिए सही रास्ता दिखलाने दें। वास्तव में बहुधा प्रार्थना रास्ते का अंतर ज्ञान प्रदान करता है। संत पापा ने कहा,
Il Signore non permette mai un problema senza darci anche l'aiuto necessario per affrontarlo.
ईश्वर हमारे लिए आवश्यक सहायता के बिना मुसीबत को सामने नहीं लाते हैं। वे हमें आग में नहीं ढकेलते हैं। वे हमें जंगली जानवरों के बीच नहीं फेंकते हैं। हमारी मुसीबतों के साथ वे हमारे लिए समाधान भी लेकर आते हैं। योसेफ का दूसरा रहस्यात्मक सपना उस समय आता है जब बालक यीशु का जीवन खतरे में पड़ जाता है। यहाँ हम संदेश को स्पष्ट पाते हैं। उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। वहाँ तब तक रहिए जब तक मैं ना कहूँ, क्योंकि हेरोद बालक को मार डालने के लिए खोज रहा है। योसेफ बिना हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन करते हैं। वह उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। वह हेरोद की मृत्यु तक वहीं रहा। हम अपने जीवन में खतरे का अनुभव करते हैं, जो हमारे जीवन को या प्रिय जनों को जोखिम में डाल देता है। उन परिस्थितियों में प्रार्थना करने का अर्थ उस वचन को सुनना है, जो योसेफ की तरह हमें साहस से भर देता है, जहां हम बिना भयभीत हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं। मिस्र में योसेफ ईश्वर की एक निशानी की प्रतीक्षा कर रहा होता है, जिससे वह अपने देश को लौट सके। और तीसरे सपने में मुख्यतः यही होता है। स्वर्गदूत उन्हें इस बात को प्रकट करते हैं कि वह जो बालक को मार डालने की सोच रहा था मर गया है, अतः वह मरियम और यीशु के साथ अपनी मातृभूमि को लौट जाए। योसेफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इसराइल देश चला आया। लेकिन अपनी इस यात्रा के दौरान उसे यह पता चलता है कि अरकेलोस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए उसे वहां जाने का डर लगा और स्वप्न में वह चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। यहां हम चौथे सपने को पाते हैं। भय हमारे जीवन का अंग है और यह भी हमसे प्रार्थना की मांग करता है। ईश्वर इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं कि हम अपने जीवन में कभी भयभीत नहीं होंगे, लेकिन उसकी सहायता बिना हम अपने निर्णयों में खरा नहीं उतरेंगे। योसेफ अपने में भयभीत होता है, लेकिन ईश्वर उन्हें इस भय के पार ले जाते हैं।
La potenza della preghiera fa entrare alla luce nelle situazioni di buio.
प्रार्थना की शक्ति हमारी अंधेरी परिस्थितियों में ज्योति लाती है, संत पापा ने कहा। इस समय मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो जीवन के बोझ से दबे हैं और आशा या प्रार्थना करने में असक्षम हैं। संत योसेफ उन्हें ईश्वर के साथ वार्ता करने हेतु खुला रखें, जिससे वे ईश्वर की ज्योति, शक्ति और शांति का अनुभव कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों की तकलीफों के संबंध में उन अभिभावकों के बारे में भी सोचता हूँ। बच्चे जो बहुत सारी बीमारियों के शिकार हैं, कई एक जो स्थायी रोगों से ग्रसित हैं, उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ता है। माता पिता जो अपने बच्चों में विभिन्न यौन रुझान को देखते हैं, वे इसका सामना कैसे करें और अपने बच्चों के व्यवहार को दोषारोपित किए बिना किस तरह उनका साथ दें। माता पिता अपने बच्चों को एक बीमारी के कारण अपने से दूर होता देखते हैं। ऐसी बातों को हम समाचारों में रोज दिन पढ़ते, जो अपने में कितना दुखद है। संतानों का वाहन दुर्घटना शिकार होना, माता पिता जो अपने बच्चों को स्कूल जाते नहीं देखते और नहीं जानते कि उनका सामना कैसे किया जाए। माता पिता के लिए कितनी समस्याएं हैं, संत पापा ने कहा। हम इन सारी बातों के बारे में सोचें, हम कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने ऐसे माता पिता के लिए सांत्वना के शब्द उच्चारित करते हुए कहा कि आप भयभीत ना हो। निश्चय ही हम अपने में बहुत दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन हम ईश्वर के बारे में सोचें, योसेफ के बारे में सोचें, कैसे उन्होंने अपनी समस्याओं का सामना किया और उनसे सहायता की मांग करें। हम बच्चों को कभी दोष ना दें। संत पापा ने बोयनस आयरस के अपने एक अनुभव को साझा करते हुए कहा कि बस में यात्रा करते हुए उन्होंने जेल के सामने माता पिता की लंबी कतार को देखा, जो अपने बच्चों के संग भेंट करने हेतु खड़े थे। वहां बहुत सारी माताएं थीं। वे अपने संतानों की गलतियों के लिए उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थीं। यह हमारे लिए माता पिता के साहस को व्यक्त करता है, जो अपनी संतानों के साथ चलने को सदैव तैयार रहते हैं। संत पापा ने ऐसे माता पिता के लिए संत योसेफ से सहायता की याचना करते हुए सबों को प्रार्थना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, प्रार्थना यद्यपि अपने में कभी अमूर्त नहीं होता, बल्कि यह सदैव ठोस करुणा के कार्य में संयुक्त होता है जब हम अपनी प्रार्थना को प्रेम में अपने संतानों और पड़ोसियों के संग संयुक्त करते, केवल तब हम ईश्वर के संदेश को समझने के योग्य होते हैं। योसेफ ने प्रार्थना, कार्य और प्रेम किया। ये तीन बातें अभिभावकों के लिए अति सुंदर हैं। प्रार्थना, कार्य और प्रेम, इन्हीं कारणों से योसेफ के जीवन की कठिन परिस्थितियों में वे सारी चीजें सदैव उन्हें प्राप्त हुई जिनकी उन्हें जरूरत थी। हम अपने को उन्हें सुपुर्द करें और उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें। संत योसेफ, सपने देखने वाले व्यक्ति, हमें आध्यात्मिक जीवन की खोज करने का पाठ पढ़ा, जहां आंतरिक स्थल में ईश्वर हमें अपने को प्रकट करते और हमें बचाते हैं। हमारे बीच से इस मनोभाव को दूर कर कि प्रार्थना करना व्यर्थ है। हम में से हर किसी को ईश्वर द्वारा निर्देशित होने में मदद कर। हमारे तर्क पवित्र आत्मा की ज्योति में प्रकाशित हों, हमारे हृदय उनकी शक्ति से प्रोत्साहित हों, और भय की घड़ी में हमें उनकी करुणा में संरक्षण मिले। आमीन। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र यूक्रेन जिस संकट का सामना कर रहा है उसे याद करने के लिए समर्पित दिन पर संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अंत में एक बार फिर से अपील की कि पक्षपातपूर्ण हितों पर सभी की भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज 26 जनवरी यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना का दिन है, और जैसा कि संत पापा फ्रांसिस खुद पिछले रविवार को देवदूत प्रार्थना के उपरांत इसकी घोषणा की थी, उन्होंने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के दौरान संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में एकत्रित विश्वासियों से यूक्रेन में शांति बहाल होने के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। संत पापा ने विश्वासियों का अभिवादन कर कहा, मैं आपसे यूक्रेन में अभी और इस पूरे दिन में शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह करता हूँ। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि देश में भाईचारे की भावना विकसित हो और सभी दुख, भय एवं विभाजन दूर हो जाएं। आज हमारी प्रार्थनाएं और मिन्नतें जो स्वर्ग तक पहुँचती है, विश्व नेताओं के मन और दिलों को छुए ताकि संवाद कायम हो सके और आम भलाई को पक्षपातपूर्ण हितों से आगे रखा जा सके। आइए हम शांति के लिए हे पिता हमारे प्रार्थना को एक साथ कहें, क्योंकि यह पिता के लिए अपने बच्चों की प्रार्थना है, वह प्रार्थना जो हमें भाई बहन बनाती है, उन बच्चों की प्रार्थना जो सुलह और सामंजस्य के लिए याचना करते हैं। यूक्रेन में शांति के लिए संत पापा फ्रांसिस की अपील का जवाब देने के लिए विभिन्न देशों के कैथोलिक समुदायों और पल्लियों में प्रार्थना सभाओं की योजना बनाई गई है। इटली में विशेष रूप से कई पहलों की योजना बनाई गई है। रोम में स्थानीय समय अनुसार शाम 5 बजे त्रास्तेवरे के संत मरिया महागिरजाघर में संत इजिदियो समुदाय की अगुवाई में एक विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया है। रोम में ही शाम 6 बजे यूक्रेनी समुदाय के लिए संत सोफिया महागिरजाघर में प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। संत पापा फ्रांसिस ने यूक्रेन में तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह शांति के लिए खतरा और यूक्रेन एवं पूरे यूरोप की सुरक्षा का सवाल है। 1,20,000 से अधिक रूसी सैनिक यूक्रेनी सीमा पर और डोनबास के क्षेत्र में तैनात हैं। वाशिंगटन यूरोपीय नेताओं और नाटो के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। इस सप्ताह के अंत में अटलांटिक एलायंस रूस को एक लिखित प्रस्ताव भेजेगा ताकि संकट का कोई रास्ता निकाला जा सके। और संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार ये आम दर्शन समारोह के अंत में सभागार में एकत्रित विश्वासियों से होलोकोस्ट के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस की याद दिलाते हुए सभी से नई पीढ़ी को यहूदियों पर हुए भयानक अत्याचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अपील की। संत पापा ने कहा, कल 27 जनवरी को होलोकोस्ट के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस है। लाखों यहूदियों और विभिन्न राष्ट्रीयताओं और धार्मिक विश्वासों के लोगों के विनाश को याद रखना आवश्यक है। यह अकथनीय क्रूरता अब नहीं दोहराई जानी चाहिए। मैं सभी से, विशेष रूप से शिक्षकों और परिवारों से नई पीढ़ी को इतिहास के इस काले पृष्ठ की भयावहता के बारे में जागरूकता बढ़ाने की अपील करता हूँ। इसे नहीं भूलना चाहिए ताकि एक ऐसे भविष्य का निर्माण किया जा सके जहां मानवीय गरिमा को कभी ठेस न पहुंचे। संत पापा फ्रांसिस ने आम दर्शन समारोह के अंत में ऑशविट्स बिर्केनो यातना गृह में नजरबंद बेलारूसी मूल की पोलिस लीडिया मैक्सिमोविच का अभिवादन किया। वे अपनी मां के साथ 3 साल की उम्र में शिविर में आई थी और मां से बिछुड़ गई थी। फिर उन्हें रूस में पाया गया जब वह वयस्क हो गई थी। वे एकाग्रता शिविरों के अत्याचारों और डॉक्टर जोसेफ मेंजेल के प्रयोगों की जीवित गवाह हैं। संत पापा और लीडिया के बीच आज दूसरी मुलाकात है। पहली बार 26 मई 2021 को संत दमासो प्रांगण में बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अंत में संत पापा ने लीडिया से मुलाकात की थी और ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह के समापन पर 25 जनवरी को संत पौलुस महागिरजाघर में संत पापा फ्रांसिस ने संत पौलुस के मन परिवर्तन पर्व की संध्या वंदना की अध्यक्षता की। कॉन्स्टेंटिनोपल के प्रातिधर्माध्यक्ष के प्रतिनिधि, कैंटरबरी के महाधर्माध्यक्ष और अन्य ख्रिस्तीय कलीसियाओं और ख्रिस्तीय समुदायों के प्रतिनिधि संत पौलुस महागिरजाघर में संत पापा फ्रांसिस की अध्यक्षता में संध्या वंदना में शामिल हुए। इस वर्ष प्रार्थना सप्ताह का विषय बालक येसु की आराधना करने के लिए ज्योतिषियों की बेतलहम यात्रा के सुसमाचार पाठ से लिया गया है। हमने पूर्व में उनके सितारे को देखा और हम उनकी आराधना करने आए। ज्योतिषियों की कहानी हमें पूर्ण एकता के मार्ग में मदद कर सकती है। संत पापा ने संध्या वंदना के दौरान अपने प्रवचन में यात्रा के 3 चरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, पूर्व में इसकी शुरुआत यरूशलेम के माध्यम से उनका मार्ग और बेतलहम में उनका अंतिम आगमन। संत पापा ने कहा, ज्ञानियों ने पूर्व में तारा देखा जहां सूर्य उगता है। वे अपने स्वयं के ज्ञान और परंपराओं से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन कुछ और चाहते थे। इस बात की परवाह किए बिना कि सड़क कितनी लंबी और थकाऊ हो सकती है, संत पापा फ्रांसिस ने सभी ख्रिस्तियों से येसु के सितारे और एकता के उनके निमंत्रण का अनुसरण करने का आह्वान किया। संत पापा ने आगे कहा, पूर्व हमें युद्ध और हिंसा से तबाह हुए विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले ख्रिस्तियों, विशेष रूप से मध्य पूर्व के ख्रिस्तियों की भी याद दिलाता है। इन क्षेत्रों के शहीद एकता के स्पष्ट मार्ग के संकेत देते हैं। जब ज्योतिषी यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने राजा हेरोद और उनके साथ सारे यरूशलेम वासियों को उनके मिशन में परेशान पाया। पवित्र शहर में ज्योतिषियों ने इस दुनिया की अंधेरी ताकतों के प्रतिरोध का अनुभव किया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।